ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल की स्विट्जरलैंड और जर्मनी यात्रा को मंत्रिपरिषद बैठक ने दी मंजूरी। अगर देश में उपलब्ध स्रोत साधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके तो विकास में चार चांद लग जाएंगे, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड का कथन। जरूरत और औचित्य को देखकर ही टैक्स दर में बदलाव किया गया है, अर्थमंत्री वर्षमान पुन का कथन। सुर्खेत के राता नांगला में जीप दुर्घटना में मरने वाले चार लोगों की हुई शिनाख्त। और भारत शासित जम्मू जिला में बस दुर्घटना में 21 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल की स्विट्जरलैंड और जर्मनी यात्रा को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राष्ट्रपति पौड़ेल के इसी जेठ 31 गते को जिनेवा में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग लेने के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है। सरकार की प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने बताया कि राष्ट्रपति पौड़ेल को जिनेवा में जर्मनी जाने का भी कार्यक्रम है। मंत्रिपरिषद बैठक ने नेपाल न्याय सेवा की ओर राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी पद पर खेमराज गेवाली, यम बहादुर बुढ़ामगर और भद्रकाली पोखरेल को पदोन्नति कर क्रमशः नायब महान्यायाधिवक्ता, न्याय परिषद के सचिव और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार पद पर पदस्थापन करने लगायत के निर्णय किये। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करें तो नेपाल कुछ ही वर्षों में एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। आज मोरंग के विराटनगर में शुरू हुए श्रमदान मेले का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ देश की संभावनाओं को तलाशा जाए और संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए तो विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि देश के अंदर संभावनाओं को तलाशने और विकास के काम को गति देने के लिए राजनीतिक नेतृत्व के अपमान की प्रवृत्ति को बदलना जरूरी है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि यदि नेपाल कृषि, पर्यटन और वनस्पति का उपयोग कर सके तो वह विकास में छलांग लगाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि नेपाल सरकार द्वारा शुरू की गई श्रमदान मेला परियोजना सभी 7 प्रदेशों में लागू की जाएगी, ऐसे रचनात्मक कार्यों से देश के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। वहीं कार्यक्रम में श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री डोल प्रसाद अर्याल ने कहा कि चूंकि नेपाल में बड़ी संख्या में उद्योग और कारखाना है, अगर वे यह बात फैला सके कि इसके जरिए रोजगार पैदा किया जा सकता है, युवाओं और नागरिकों को रोजगार मिल सकता है और विदेश जाने से रोका जा सकता है। कोसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कार्की ने कहा कि अगर विराटनगर जोगबनी नाका को उत्तरी चीन से जोड़ने वाली कीमा थांका सड़क को संचालित किया जा सके तो लाखों नागरिकों को रोजगार मिलेगा। आंतरिक रोजगार को बढ़ावा देने और वैदेशिक रोजगार को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से विराटनगर में श्रमदान रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि रूढ़िवाद और अंधविश्वास को हटाकर समाजवादी संस्कृति का विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। जन सांस्कृतिक महासंघ नेपाल के 8वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आज काठमांडू में उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन को ऊपर उठाने के लिए सामाजिक रूपांतरण आवश्यक है। अर्थमंत्री वर्षमान पुन ने कहा कि तथ्य पर आधारित बजट बनाया गया है जिसमें अधिकांश क्षेत्रों और सरोकार है, इसलिए ये स्वीकार्य है। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ द्वारा आज काठमांडू में आयोजित विचार विमर्श कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरोकार सभी क्षेत्रों के लिए संतुलित बजट लाया गया है। सुर्खेत में जीप दुर्घटना में मरने वालों सभी 4 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। आज सुबह वीरेंद्रनगर नगर पालिका वार्ड नंबर 13 ठाकुरे मोड़ में जीप दुर्घटना में कालीकोट की शुभ कालिका गांव पालिका वार्ड नंबर 3 के तंतकामी वीरेंद्र विक, नवराज विक और दैलेह की भैरवी गांव पालिका वार्ड नंबर 4 के महेंद्र साही की मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत ने दी। उन सभी की मौके पर मौत हो गई, ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत के एसपी पूर्ण केसी ने दी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल समक्ष नेपाल के लिए विभिन्न चार देशों के नवनियुक्त गैर आवासीय राजदूतों ने अपनी अपनी ओहदा के प्रमाण पत्र पेश किया। आज राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित अलग अलग विशेष समारोह में नेपाल के लिए गणतंत्र घाना के गैर आवासीय राजदूत डॉ बिन फ्रेन नी ओकाई हामोंड, गणतंत्र बुल्गेरिया के गैर आवासीय राजदूत निकोले यानकोव, इरिट्रिया के गैर आवासीय राजदूत अलेम बल्डे मारियम और गणतंत्र फिलीपींस के गैर आवासीय राजदूत जोसेल फ्रांसिसी ने ओहदा का प्रमाण पत्र पेश किया। समारोह में उप प्रधानमंत्री एवं परराष्ट्र मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत नेपाल सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों समेत के उपस्थिति थे। यह जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय के सहायक प्रवक्ता बसंत प्रसाद पंथी ने दी। संसद के शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि के आज के बैठक में नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक ऊपर दफावार विचार विमर्श हुआ है। विचार विमर्श में सांसदों बद्री पांडे, डॉक्टर तोशिमा कार्की ने प्रागिक व्यक्तियों में से खुला प्रतिस्पर्धा करके कुलपति नियुक्त होने का प्रावधान सहित राष्ट्रीय सभा से पारित होकर आए विधेयक में कुलपति कार्यकारी बनाकर उपकुलपतियों के पदों को हटाने का प्रस्ताव किया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14# ह्यास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक मामिला समिति ने एसिड आक्रमण से पीड़ित व्यक्ति को अदालत के फैसले के तय किए गए रकम और इलाज में लगने वाले खर्च क्षतिपूर्ति राहत कोष से राहत रकम उपलब्ध कराने का निर्देश किया है। आज समिति की नेपाल में एसिड आक्रमण पीड़ितों के क्षतिपूर्ति के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए सिंह दरबार में हुई बैठक से पीड़ित के निवेदन आने के एक महीने के अंदर क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था मिलाने के लिए कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय को निर्देश की गई। राष्ट्रीय सभा के विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति की बैठक से 16वां पंचवर्षीय परियोजना के मुख्य विषय वस्तुओं और अधिकतम विकसित मुलुक से विकासशील राष्ट्र में स्तरोन्नति के लिए सरकार के तैयारी के बारे में विचार विमर्श किया है। आज सिंह दरबार स्थित समिति की विचार विमर्श में सांसदों ने तथ्यांक में ही मात्र गरीब का अंत न होकर वास्तविक गरीबी का अंत होना चाहिए, 16वां पंचवर्षीय परियोजना में महत्वाकांक्षी परियोजना कार्यान्वयन का चुनौती है, ये कहते हुए राष्ट्रीय योजना आयोग को ध्यानाकर्षण कराया। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल ने कहा कि गणतंत्र प्राप्ति के बाद के अवधि में देश के समग्र विकास ने गति लिया है। गणतंत्र दिवस 2081 के अवसर पर राष्ट्रीय समाचार समिति रासासा द्वारा आयोजित गणतंत्र के उपलब्धि समृद्धि के लिए पूर्वाधार शीर्षक के तस्वीर प्रदर्शनी का अवलोकन पश्चात अध्यक्ष नेपाल तत्काल देश में आर्थिक समृद्धि के प्रमुख आधार माने गए पूर्वाधार क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जम्मू के अखनूर में एक बस के खाई में गिर जाने से 21 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक अन्य घायल हो गए हैं। बस में 50 यात्री सवार थे। यात्रियों में से अधिकतर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कुरुक्षेत्र के तीर्थयात्री थे। वे रियासी जिले के प्रसिद्ध शिव खोड़ी मंदिर जा रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू जिले के चौकी चोरा क्षेत्र में तांगली मोड़ पर बस सड़क से फिसलकर करीब 150 फुट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। कुछ यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अखनूर के अस्पताल और जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। अब मौसम। अगले 24 घण्टों में काठमाण्डू घाटी का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमाण्डू घाटी का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल की स्विट्जरलैंड और जर्मनी यात्रा को मंत्रिपरिषद बैठक ने दी मंजूरी। अगर देश में उपलब्ध स्रोत साधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके तो विकास में चार चांद लग जाएंगे, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड का कथन। जरूरत और औचित्य को देखकर ही टैक्स दर में बदलाव किया गया है, अर्थमंत्री वर्षमान पुन का कथन। सुर्खेत के राता नंगला में जीप दुर्घटना में मरने वाले चार लोगों की हुई शिनाख्त। और भारत प्रशासित जम्मू जिला में बस दुर्घटना में 21 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।